समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं चारू सक्सेना और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। हाय शगुन।
हेलो चारू।
शगुन, आपने देखा होगा जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम कितने ध्यान से उसे देखते हैं, परखते हैं, अपनों से राय लेते हैं। तो आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आज दिल्ली की सरकार चुनी जा रही है, ये फैसला 5 सालों तक हम सबके जीवन पर असर डालेगा। तो अगर आपने अब तक वोट नहीं डाला है तो जरा बाहर निकलिए और चुन लीजिए ऐसी सरकार जैसी आप चाहते हैं। और अगर वोट डाल चुके हैं तो और लोगों को कहिए कि वो भी लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बने। क्यों शगुन, क्या ख्याल है आपका?
वेल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट अबाउट इट चारू, एंड इलेक्शंस आर द सेंटर पीस ऑफ आवर डेमोक्रेसी एंड दिस इज अ फेस्टिवल इन इटसेल्फ, सो गो आउट देयर एंड वोट।
यस
एंड विद दैट अ हार्टफेल्ट गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। दिस इज शगुन विद चारू हियर एंड वी हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ कमिंग अप फॉर यू, अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेसेस एंड ट्रिब्यूट्स, एंड देयर इज अ लॉट मोर, सो मेक श्योर लिसनर्स टू स्टिक अराउंड टिल द एंड। वी विल बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट, राइट? Over 46.55% voter turnout recorded till 3 p.m. for all 70 assembly seats in Delhi.
आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, भाजपा के प्रवेश वर्मा तथा कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित सहित प्रमुख उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
By polls in Erode East assembly seat in Tamil Nadu and Milkipur in Uttar Pradesh also taking place today.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई।
President Donald Trump withdraws U.S. from United Nations Human Rights Council.
और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन मुंबई और हरियाणा के बीच क्वार्टर फाइनल मैच स्थल लाहली से कोलकाता स्थानांतरित।
And now it's time for our discussion segment, Dateline India, and today we will be talking about impact of global warming and climate change on farmers, the agricultural sector. Well, climate change has a profound impact on the agricultural sector. Changes in temperature and precipitation patterns, increasing intensity of extreme weather events and rising atmospheric carbon dioxide are having direct and also indirect effects on crop yields, water availability, number two, number three, nutrient cycling, and number four, livestock health. According to the UN Intergovernmental Panel on Climate Change, I'm going to quote them, the IPCC, the crop yields could fall by 10 to 25%, 10 to 25% by 2050. And the reason is high temperatures and extreme weather events. The United Nations Food and Agriculture Organization, FAO, recently said in a report that poor households globally lose 5% of their total income in an average year due to heat stress, and 4.4% due to floods, compared with households that are relatively better off. It is also expressed that there is a concern about the negative impacts of climate change on the farming population in India.
बिल्कुल शगुन, परिवर्तन से बहुत चेंजेस आते हैं, जलवायु परिवर्तन सब कुछ हिला के रख देता है। देखिए, रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत में ग्रामीण गरीब परिवार जलवायु परिवर्तन के तनाव से अलग तरह से प्रभावित होते हैं और सूखे के दौरान खेत से बाहर रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, जिससे उन्हें कृषि के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीब परिवारों की जलवायु परिवर्तन तनावों के प्रति संवेदनशीलता संरचनात्मक असमानताओं में होती है और इस नकारात्मक मुकाबले को ये रणनीतियों पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रत्याशित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को बढ़ाने के अवसरों में सुधार करने का आह्वान करती हैं।
And if we talk about the precautionary measures that the governments they are taking, that it has taken several steps towards mitigation of this adverse impact of global warming and climate change on the agriculture, this particular agriculture sector. The National Action Plan on Climate Change, which is NAPCC, provides an overarching policy framework to enable the country to adapt to climate change and enhance ecological sustainability. To adapt climate change and enhance the ecological sustainability, these two things.
Yeah.
And one of the national missions under NAPCC is the National Mission for Sustainable Agriculture, which implements strategies to make agriculture more resilient to the climate change.
मिशन के तहत प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से निपटने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं और जैसे प्रति बूंद अधिक फसल योजना, सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत में जल की कमी को दूर किया जा सकता है. और देखिए वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास योजना उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े नुकसान को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली पर केंद्रित है. मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना राज्यों को मृदा स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खाद और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने में सहायता करती है.
Well, Charu, I would like to add a couple of points more to that. The National Innovations on Climate Resilient Agriculture, NICRA, has been launched by the Indian Council of Agricultural Research to enhance resilience of Indian agriculture to climate change through strategic research and technology demonstration. It is worthwhile here to mention that India has contingency plans for all agricultural districts and the first country to implement an employment guarantee scheme as a social safety net for the farmers. So climate change has a profound impact on the agricultural sector. So changes, the necessary changes have to be made so that climate change doesn't adversely impact the agricultural sector.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
Well, voting is underway for assembly elections in Delhi for all 70 seats amid tight security. The Election Commission has deployed more than 1,80,000 polling personnel to ensure smooth conduct of election. And now we go over to our correspondent Bhanu for latest updates in a moment from now, right? So,
yeah.
Bhanu, can you share the live updates with us? Bhanu, can you hear me? I think he is. We are going to be joined by him. Yeah, we are joined by him now. So, Bhanu, can you share the latest updates with our listeners?
Yes, Shagun. The voting is progressing smoothly in all the 70 assembly constituencies. Right. Around 1.56 crore voters of the city are sealing the mandate of 699 candidates who are in play. I have visited several polling booths since morning, and as we reach the final hour of the polling day, voters of all age groups can be witnessed queuing to cast their votes. The voting percentage of 46.55% has been recorded in the national capital as of 3 p.m., while the maximum voting turnout has been 52.73% in Northeast Delhi. The minimum voting turnout has been recorded at 43.10% in New Delhi. Talking about the arrangements, Shagun, in polling booths, comprehensive arrangements have been made by the Election Commission to ensure smooth and transparent polling. Facilities like drinking water, washrooms, and paramedical staff facilities have been installed at the polling stations. Besides, wheelchair and pick-and-drop facilities have been provided to help the senior citizens. The security arrangements have been watertight as well. The polling stations and premises are being monitored through CCTV, and adequate polling personnel have been deployed as well. A helpline is also available for the voters for any voting-related assistance. This time, the Election Commission has also established many pink booths as well as theme-based booths to encourage maximum participation among the voters.
Right.
And we are about to reach the end of the voting process, which will culminate at 6 p.m. today. Shagun.
Right. Thank you so much, Bhanu, for all the updates.
चलिए शगुन, अब हम आपको जयपुर लिए चलते हैं. देखिए, उत्सवों की धरा राजस्थान की राजधानी, हाल ही में साहित्य का महाकुंभ कहे जाने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हुआ. 30 जनवरी से शुरू हुआ ये और 5 दिन के इस महोत्सव में 250 सेशंस में 600 वक्ताओं ने अपनी बात रखी और 100 से अधिक देशों के मेहमानों ने शिरकत की. एक रिपोर्ट।
शब्द कला और संस्कृति के सुंदर रंगों से सजा साहित्य का वार्षिक उत्सव जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 18वां संस्करण हाल ही में जयपुर में संपन्न हुआ। इसमें विचारोत्तेजक चर्चा, परिचर्चाओं, बुक लॉन्च, रोचक किस्से कहानियां और संवाद सत्रों के माध्यम से रचनात्मकता के अनगिनत रंग नजर आए। लेखकों, कवियों, विचारकों, साहित्य प्रेमियों और कलाकारों को एक मंच पर लाने वाले इस उत्सव में यूरोपीय संघ की पार्टनर के रूप में भागीदारी रही। भारत और यूरोप के सांस्कृतिक और साहित्यिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से ये साझेदारी की गई। JLF में नोबल पुरस्कार से सम्मानित वेंकी रामकृष्णन, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी, बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री, लेखिका सुधा मूर्ति, गीतकार जावेद अख्तर, मशहूर अभिनेता अमोल पालेकर और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। JLF की सजावट थीम उत्सव रखी गई और वेन्यूज को हेरिटेज अंदाज में खूबसूरती के साथ सजाया गया। फेस्टिवल के तहत जयपुर म्यूजिक स्टेज पर नामचीन कलाकारों ने दर्शकों का मनोरंजन किया। फेस्टिवल के त्योहारी बाजार में हाथ से बने कलात्मक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला भी उपलब्ध रही। परिक्रमा के लिए जयपुर से सालेहा गाजी।
एंड नाउ न्यूज फ्रॉम महाकुंभ। Prime Minister Narendra Modi today took a holy dip in Triveni Sangam at Mahakumbh Prayagraj. In a social media post, Mr. Modi said, "The snan at the Sangam is a moment of divine connection." He said that the crores of others who have taken part in it, he was also filled with the spirit of devotion. Mr. Modi hoped that Ma Ganga will bless countrymen with peace, wisdom, good health and harmony. We have more from our correspondent who has filed this report.
The Prime Minister Modi took a boat ride with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath to reach Triveni Sangam. Mr. Modi performed aarti and puja at Triveni Sangam, the confluence of Ganga, Yamuna and Saraswati River.
Yato yata hai samiha se tato no abhaya.
In line with the government's commitment to promote and preserve India's spiritual and cultural heritage, the Prime Minister has consistently taken proactive steps to enhance infrastructure and facilities at pilgrimage sites. Earlier, during his visit to Prayagraj in December last year, Prime Minister Modi had inaugurated 167 development projects worth 5,500 crore rupees, improving connectivity, amenities and services for the general public. The Mahakumbh 2025, which commenced on Posh Purnima, 13th January, is the world's largest spiritual and cultural gathering attracting devotees from across the globe. It will continue until Mahashivratri on 26th February. More than 39 crore devotees have taken holy dip in the Triveni Sangam so far. With Dipendra Kumar, Aman Yadav, Akashvani News, Prayagraj.
And now Charu, we may proceed. Where are you taking our listeners now?
Ahmedabad. देखिए, आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिका की क्रिकेट टीम अभी गुजरात के आनंद में क्रिकेट प्रैक्टिस कर रही है और अमेरिका की टीम वनडे वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होने के लिए अभी से मेहनत कर रही है।
वाव।
अमेरिकी क्रिकेट टीम आनंद जिले के जितोदिया स्थित क्रिकेट अकादमी में अभ्यास कर रही है। टीम को आने वाले दिनों में ओमान में होने वाले एक टूर्नामेंट में भाग लेना है, जिसके पहले वे एशियाई पिचों पर अभ्यास करने के लिए फिलहाल गुजरात के आनंद में हैं। 2024 के T20 विश्व कप के सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान सहित तीन टीमों को हराने के बाद अमरीकी टीम आनंद के क्रिकेट अकादमी में अभ्यास कर रही है। अमरीकी टीम के कप्तान मोनांक पटेल मूल रूप से आनंद के है और उन्होंने अंडर 16 और अंडर 18 स्तर पर गुजरात के लिए खेला है। मोनांक पटेल के अलावा अमेरिकी टीम में सौरभ नेत्रवलकर, स्मित पटेल, मिलिंद कुमार, उत्कर्ष श्रीवास्तव, सैतेजा मुक्कामल्ला और संपत कुमार जैसे कई भारतीय भी शामिल है। अमेरिकी क्रिकेट टीम की नजर अब 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने पर है। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अनिल पटेल।
And now, listeners, we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी रमेश स्वामी को याद करते हैं, जिनका 5 फरवरी 1947 को निधन हो गया था। वो तत्कालीन भरतपुर राज्य के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। पेशे से शिक्षक रमेश स्वामी 1937 में भरतपुर प्रजा परिषद के सक्रिय सदस्य बने। उन्होंने एक जिम्मेदार सरकार के लिए लोगों को संगठित करने की गतिविधियों में भाग लिया और भरतपुर शासक के खिलाफ सत्याग्रह आयोजित करने के लिए राज्य के सभी हिस्सों की यात्रा की।
मई 1939 में उन्होंने भरतपुर प्रजा परिषद के नेतृत्व में आयोजित सत्याग्रह में भाग लिया, परिणाम स्वरूप उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 1942 में रमेश स्वामी ने भरतपुर राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें भारत रक्षा नियमों के तहत गिरफ्तार कर कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया।
फरवरी 1947 में रमेश स्वामी ने भुसावर और भरतपुर राज्य के अन्य स्थानों पर बेगार विरोधी आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन के खिलाफ पुलिस ने कई जगह क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की। रमेश स्वामी को वहां जाने से रोका गया और उन्हें बस में नहीं बैठने दिया गया। विरोध स्वरूप सत्याग्रही बस के आगे लेट गए। पुलिस के आदेश पर सत्याग्रहियों को निर्ममता से कुचलते हुए बस आगे बढ़ी। रमेश स्वामी और कई अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हम इन सभी महान शहीदों को नमन करते हैं।
जयंतिया स्वतंत्रता सेनानी ऊ गिरी दोलोई को भी याद कर रहे हैं, जो 5 फरवरी 1862 को शहीद हुए थे। जयंतिया हिल्स के एक क्षेत्र के प्रमुख ऊ गिरी दोलोई ने मेघालय में अपने पैतृक गांव शांगपुंग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे ब्रिटिश सशस्त्र बलों का विरोध करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी।
अंग्रेजों द्वारा जयंतिया लोगों के साथ दुर्व्यवहार और उन पर आवास कर तथा आय कर लगाने के कारण जयंतिया क्षेत्र में शांति पैदा हो गई थी। जयंतिया लोगों ने हथियार उठा लिए। उग्री दोलोई ने अपने योद्धाओं के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। हम इस महान जयंतिया स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करते हैं।
आज हम प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका जुथिका रॉय को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 5 फरवरी 2014 को हुआ था। वे महात्मा गांधी की पसंदीदा गायिका थीं। गांधी जी अपनी प्रार्थना से पहले हर दिन उनके भजन सुनते थे। स्वतंत्रता पूर्व के दिनों में आधुनिक मीरा के रूप में विख्यात जुथिका रॉय मीराबाई के भजनों के गायन के लिए लोकप्रिय थी।
1946 में गांधी जी ने उन्हें बंगाल में सांप्रदायिक तनाव के अशांत दिनों के दौरान कलकत्ता में अपने भाषण से ठीक पहले भजन गाने के लिए कहा।
15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने उनसे गाने के लिए उनके कार्यक्रम के 15 मिनट का समय समाप्त होने के बाद भी तब तक गाना जारी रखने का अनुरोध किया जब तक कि वे झंडा न फहरा दें। जुथिका रॉय ने हिंदी और बंगाली के अलावा कई अन्य भाषाओं जैसे उर्दू और तमिल में भी गाया।
Now, let's focus on business updates today. Benchmark domestic equity indices ended today's range-bound session in negative terrain, dragged by realty, FMCG and consumer durable sectors. The 30-share index at Bombay Stock Exchange, Sensex, slipped 312 points or 0.4% to close at 78,271. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 fell 43 points or 0.18% to settle at 23,696. In the global crude market, Brent crude was trading almost 0.9% down at $75.52 per barrel, and WTI crude lost over 0.8% to trade at $72.06 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading about 84,750 rupees for 10 grams, and silver 999 fine is also trading up at 96,680 per kilogram when reports last came in.
और अब चलते हैं खेल की दुनिया में। शगुन
जी,
आज फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ा खास दिन है, क्योंकि आज रोनाल्डो और नेमार दोनों ही का जन्मदिन है और वो लोग मना रहे हैं आज भाई। पर अब किसी एक खेल की नहीं, अब आ रही है खबर खेल की दुनिया की
जी।
तो लेते हैं भाई, रिजोरियो चैलेंजर टेनिस में आज रात अर्जेंटीना में पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में स्टार भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल का मुकाबला बोलविया के ह्यूगो डेलियन से होगा। इससे पहले 27 वर्षीय भारतीय ने स्थानीय पसंदीदा रेंजो ओलिवा को बड़ी टक्कर के बाद राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया।
Now turning our attention to cricket, the Ranji Trophy quarter-final between defending champions Mumbai and Haryana has been moved from Lahali to Kolkata. The match will now be played at Eden Gardens from February 8 to 12. No official reason has been given for the change of the venue. Mumbai Cricket Association President Ajinkya Naik confirmed that they had received communication from the BCCI about the venue change.
और अब वक्त है करीब से देखने का उन खास लोगों को जिन्होंने आज जन्म लिया या दुनिया से विदा हुए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं भजन गायिका ज्योतिका रॉय की. जी हाँ, उनका निधन आज ही के दिन 2014 को हुआ. 20 अप्रैल 1920 में बंगाल के अविभाजित हावड़ा जिले में जन्मी ज्योतिका गांधी, नेहरू, सरोजनी नायडू जैसे स्वतंत्रता सेनानी नेताओं की मनपसंद गायिका थी. ज्योतिका जी मीरा के भजनों के लिए इतनी प्रसिद्ध थी कि वो आधुनिक मीरा के नाम से मशहूर थी. भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था. ज्योतिका रॉय को 30 के दशक में खूब ख्याति मिली और सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड किया. उनकी प्रतिभा को कवि काजी नजरुल इस्लाम और कंपोजर कमलदास गुप्ता ने पहचाना. ये दोनों ही उनके मेंटर रहे. उनके भजन घूंघट के पट खोल और पग घुंघरू बांध मीरा नाची काफी लोकप्रिय थे. हमारे पहले स्वतंत्रता दिवस पर नेहरू जी ने झंडा फहराने के साथ उन्हें रेडियो पर लगातार गाने की विनती की थी. गांधी जी जब पुणे की जेल में थे तब हर सुबह प्रार्थना सभा की शुरुआत उनके ही गाने बजाकर करते थे. रॉय ने दो बंगाली फिल्मों धुली और रतनदीप में भी अपनी आवाज दी.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट थॉमस कार्लाइल, द एसेइस्ट, हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर. A leading writer of the Victorian era, he exerted a profound influence on 19th century art, literature and philosophy. Each of his subsequent works, let me name a few of them, they include On Heroes, Past and Present, Cromwell's Letters, Letter Day Pamphlets and History of Frederick the Great. These were highly regarded, and one important thing to note, he founded the London Library and contributed significantly to the creation of the National Portrait Galleries in London and Scotland and received the Pour le Mérite in 1874, among other honours.
So, Shagun, hum log jo hain ya jo chale jaate hain sab jo kaam karte hain wo sab pe itna kuch nirbhar karta hai yaadon ke liye. Dekhiye, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन विकसित करने वाले गुरु महर्षि महेश योगी का निधन आज ही के दिन 2008 को हुआ और इन्होंने योग और ध्यान को दुनिया के कई देशों में पहुंचाया. ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के जरिए दुनिया भर में उन्होंने अपने लाखों अनुयायी बनाए. 60 के दशक में मशहूर रॉक बैंड बीटल्स के सदस्यों के साथ वो कई बड़ी हस्तियों के आध्यात्मिक गुरु हुए और दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए. भक्तों को उड़ना सिखाने का दावा करने पर वो सुर्खियों में आ गए. और देखिए, ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का हिस्सा था. इसमें उनके भक्त फुदकते हुए उड़ने की कोशिश करते थे. महेश योगी ने 150 देशों में 500 स्कूल, 4 विश्वविद्यालय और वैदिक शिक्षण संस्थान खोले और लाभ न अर्जित करने वाले उनके संगठन के पास करीब 160 अरब रुपयों की संपत्ति थी. जनवरी 2008 में महर्षि योगी ने ये कहते हुए रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी कि उनका काम पूरा हो गया है और उनका गुरु के प्रति जो कर्तव्य था वो पूरा हो गया.
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ म्यूजिशियन, सिंगर, सॉन्ग राइटर, रेकॉर्ड प्रोड्यूसर टोबी कीथ कवल. ही वाज बोर्न ऑन जुलाई 8, 1961 एंड ही रिलीज्ड हिज चार्ट टॉपिंग डेब्यू सिंगल शुड हैव बीन अ कावबॉय इन 1993 व्हिच वाज अ ह्यूज सक्सेस एंड ही आल्सो रिलीज्ड हिज फर्स्ट 4 स्टूडियो एल्बम्स ईच ऑफ व्हिच अर्नड गोल्ड और हायर सर्टिफिकेशन. हिज ब्रेक थ्रू सिंगल हाउ डू यू लाइक मी नाउ वाज द टाइटल ट्रैक टू हिज 1999 एल्बम हाउ डू यू लाइक मी नाउ एंड फॉर यू लिसनर्स वी हैव दिस वंडरफुल सॉन्ग टू लिसन टू.
I was always a crazy one, broke into the stadium and I wrote your number on the 50-yard line. You were always a perfect one and a valedictorian, so under your number I wrote call for a good time. I only wanted to get your attention, but you overlooked me somehow. Besides, you had too many boyfriends to mention, and I played my guitar too loud. How do you like me now? How do you like me now?
और अब हम बता दें कि अभिनेता सुजीत कुमार का निधन आज ही के दिन 2010 को हुआ था. चलिए सुनते हैं सबसे पहले इनका ये डायलॉग जो बहुत फेमस है.
रमेश, व्हाट इज द सरप्राइज? अ काफिले मिला, डिकोड किया, चौमन से बात भी किया। आ सेठीज यार, बात करेगा? What? तो होल्ड ऑन, लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस है, हम दूसरा लाइन से बात करता है। ओ मोमेंटो
सीनियर सेठी, मोमेंटो।
तुम अभी क्या बोला? सेठी का मर्डर करने का?
Yes, he's a traitor. ये बॉस का ऑर्डर है।
Okay, order is an order.
तुम फिकर मत करो, आम उसको अभी बाहर ले जाएगा और उसका काम खत्म करेगा अभी।
मार्कोनी, बात फिनिश?
हाँ फिनिश। सीनियर सेठी, हमको बिजनेस के लिए होटल डेल्टा जाना होगा।
तो अभी अभी आपने ये डायलॉग सुना। हम बता दें कि सुजीत कुमार ने 150 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया और 7 फरवरी 1934 को वाराणसी में जन्मे सुजीत कुमार ने ज्यादातर खलनायक और चरित्र अभिनेता के रूप में काम किया। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि सुजीत कुमार को फिल्मों में काम करने में दिलचस्पी नहीं थी और वो फिल्मों में आने से पहले वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने कॉलेज के एक नाटक में भाग लिया और इस नाटक के जज पैनल में मशहूर निर्माता निर्देशक फणी मजुमदार भी थे। मजुमदार ने उनके एक्टिंग की खूब तारीफ की और सुजीत जी को अभिनेता बनने की सलाह दी। फिल्मों में सुजीत को पहला मौका किशोर कुमार ने दिया। फिल्म का नाम था दूर गगन की छाव में। सुजीत कुमार ने कई भोजपुरी फिल्मों में लीड रोल निभाया। भोजपुरी की पहली रंगीन फिल्म दंगल के वो हीरो थे और उन्होंने फिल्म पान खाए सैया हमार का निर्माण और निर्देशन दोनों ही किया था। आइए सुनते हैं इनका ये गीत।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू।
Now let's talk about another actor, Kirk Douglas. Actor and filmmaker, well, he developed into a leading box office star throughout the 1950s, known for serious dramas including war films. Douglas played an unscrupulous boxing hero in Champion, which came in 1949, which brought him his first nomination for the Academy Award for the Best Actor.
अभिनेता अभिषेक बच्चन का जन्म आज ही के दिन 1976 को हुआ। अभिषेक ने फिल्म रिफ्यूजी से डेब्यू किया, फिल्म नहीं चली पर अभिषेक बच्चन की तारीफ हुई और इसके बाद से अभिषेक के करियर में काफी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन उनके एक्टिंग फैंस पसंद करते हैं। उन्होंने गुरु और पा जैसी कई बेहतरीन फिल्में भी थीं। अभिषेक बच्चन ने कई चर्चित फिल्मों में काम किया, इनमें खास हैं मुंबई से आया मेरा दोस्त, कुछ ना कहो, जमीन, युवा, कभी अलविदा ना कहना और उमराव जान। कुछ समय पहले उन्हें आई वॉन्ट टू टॉक में देखा गया था। इस फिल्म में वो अर्जुन के रोल में थे। फिल्म में उनके बदलाव की बहुत तारीफ हुई थी और अब वो हाउसफुल 5 और बी हैप्पी में नजर आएंगे। आइए सुनते हैं फिल्म ब्लफ मास्टर से उन पर फिल्माया सुनिधि चौहान और खुद अभिषेक बच्चन की आवाज में ये गीत।
To my player, it takes D with big props to Piggy Chops and Chuck Master Sippy. My crew, the Bluff Master Movie, and those hip hop fakers, Vishal and Shaker. Here we go. Listen up, girl.
Now let's talk about another musician today. It's his birthday, Bobby Brown Sr. Singer, songwriter, he alongside frequent collaborator Teddy Riley is noted as one of the pioneers of new jack swing. And listeners, this is a fusion of hip-hop and R&B. And for you, we have this wonderful song that is playing, Don't Be Cruel.
तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का जन्म आज ही के दिन 1990 को मेरठ में हुआ। दोनों तरफ स्विंग और खास तौर पर घात तक इन स्विंग कराने में माहिर भुवनेश्वर ने दिसंबर 2012 में 2020 सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा। तो अब समय बहुत कम है, आज की परिक्रमा बस यहीं तक। इस आपसे कार्यक्रम को यहीं विराम देने की अनुमति चाहती हूं, तो इजाजत दीजिए मुझे यानी चारू सक्सेना और मेरी सहयोगी शगुन को।
नमस्कार।